गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल।
ओम शांति। हम सब बाबा की इस वरदान भूमि में बाबा के साथ नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। कल हम सबके बीच में बाबा होंगे। कैसे बाबा ने हम बच्चों की पालना की है, कैसे हर सेवा के क्षेत्र में सफलता दिलाई है, वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। आप सब यज्ञ इतिहास को जानते होंगे, पढ़ा होगा। जो मूल फाउंडेशन है, जिसके आधार से आज हम सब इतने बड़े बेहद यज्ञ को देख रहे हैं, ये सफलताएं जो प्राप्त हुई हैं, उसका मूल आधार त्याग और तपस्या। हम सब जानते हैं कि भौतिक दुनिया के अंदर साधनों की भरमार है, और साधनों के बीच में रहते हुए सतत साधना चलती रहे, उसको ही तपस्या कहा जाता है। साधनों को छोड़ करके तपस्या करने की बात नहीं है, लेकिन कोई भी साधन आत्मा को आकर्षित न करें, उनके अधीन न हो आत्मा, ये ट्रेनिंग, ये पढ़ाई स्वयं बाबा ने हम सबको पढ़ाई है। साधन तो सतयुग से लेकर के चले आए हैं। ये भारत देश तो सोने की चिड़िया थी, हर प्रकार से संपन्न था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी देवताएं अनासक्त थे। सब साधन, सब सुविधाएं उपलब्ध थीं, फिर भी उनको कहीं पर भी उनमें लिप्त नहीं दिखाया हुआ है। संगम युग पर हम सब बाबा के बच्चे बहुत प्यार से सेवाएं करते हैं, और हर एक का लक्ष्य रहता है जो कुछ हम करें उसमें 100% सफलता मिले। सफलता के लिए बाबा भी अपने बच्चों को कहते, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण आत्माओं को अगर सफलता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? लेकिन आधार को कभी भी डगमग नहीं होने देना, और वो आधार है पहला त्याग, दूसरा तपस्या। लेकिन त्याग की बहुत गहरी परिभाषा बाबा ने हम सबको सुनाई है, सिखाई है। आप सबने, जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, उन्होंने बाबा के द्वारा अव्यक्त पार्ट में एक 7 दिन का कोर्स 82 में बाबा ने त्याग पर कराया है, और उस त्याग के कोर्स में बाबा ने 7 दिन 7 जो मुरलियां सुनाई, उसमें त्याग की गहराई क्या है, त्याग किसको कहा जाता है, उसकी गुहे परिभाषा क्या है, और आप बच्चे कैसे बेहद के त्यागी और वैरागी हो, बहुत सुंदर ढंग से बाबा ने स्पष्ट किया है। थोड़े समय के बाद वो मुरलियां आपके पास रिवाइज होकर के आएंगी, लेकिन आज मुझे ये विषय मिला है, इसलिए इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। क्योंकि हम सब देह अभिमान, जो मुख्य हम सब का महान शत्रु है, जिसके कारण ही सर्व विकारों ने प्रवेश किया, बाबा ने अपने बच्चों को अपना बनाते ही पहला पाठ पढ़ाया और उस पहले पाठ के साथ साथ देह अभिमान का त्याग कैसे किया जाए, देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमान में रहने की तपस्या, यही बाबा ने हम सबको सिखाया। तो सबसे पहले इस पर विचार करें कि देह अभिमान का त्याग क्या है, क्योंकि देह में हम सब आत्माएं 84 जन्म ही रही हैं। सतयुग और त्रेता के अंदर इसका अभिमान नहीं रहा, वहां पर आत्म अभिमानी स्टेज रही, लेकिन धीरे धीरे देह के संग में आते आते आत्मा इतनी अधीन हो गई इन कर्मेंद्रियों के, जो फुल देह अभिमानी बन गई, देहभान, देह अभिमान, और धीरे धीरे वो देह अहंकार में बदल गया। सबसे पहला त्याग जो हम सब इस देह की कर्मेंद्रियां हैं, उनके आकर्षण, उनके रसनाएं, उनकी जो खींच है, जिसके अधीन आत्मा रहती है, अगर आत्मभिमानी स्थिति का हम अभ्यास करते हैं, रोज सवेरे से रात तक मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं, अपने आप इन कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल आ जाता है। बाबा ने हम सबको यही प्रैक्टिस दी है और अगर संगम युग पर हम सभी अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, केवल सेवाओं में नहीं लेकिन अपनी स्थिति बनाने में भी सफल होना चाहते हैं, तो बाबा अपने बच्चों को विशेष कोई मेहनत नहीं देते, लेकिन ये अवश्य कहते हैं, बच्चे जितना हो सके इस देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, इस देह भान से न्यारे रहने का अभ्यास करो, इसकी नेचुरल प्रैक्टिस हो जाए कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। वास्तव में योग की संपूर्ण स्टेज देह और देही का अलग अनुभव होना, इतना समय हम इस देह भान में रहे हैं, अगर मेरा भूल से भी कोई ऐसे नाम लेता है तो ध्यान चला जाता है, कोई पुकार रहा है, कोई आवाज दे रहा है, कोई कह रहा है कुछ। बाबा चाहते हैं जैसे देह अभिमान, देह भान इतना मजबूत, इतना पक्का हो गया है, ऐसे नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति बन जाए, हम किसी को भी देखें, किसी से बात करें, मिलें जुलें, कोई भी कर्म करें, आत्मा पर ध्यान जाए। तो जितना हम ये प्रैक्टिस करते हैं उतना इस देह अभिमान से मुक्त होते जाते, इसका सहज त्याग हो जाता है, कर्मेंद्रियां अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, धीरे धीरे देह के कर्मेंद्रियों के साथ आत्मा के जो गहरे संबंध हो गए हैं, आप सब अनुभव करते होंगे कि कई बार आत्मा को कर्मेंद्रियां चलाती हैं, मन कर्मेंद्रियों के इतने अधीन हो गया है, जैसा आप कहेंगी वैसा मन करने लगेगा, इसलिए देह की कर्मेंद्रियों के साथ जो आत्मा का संबंध है, जिसके कारण वो इस समय कलयुग के अंदर परवश स्थिति का अनुभव करती है, कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, बुरा निकल जाता है, ये जो परवश स्थिति है वो है आत्मा का देह के अधीन होना, इन कर्मेंद्रियों का गुलाम बनना। इसलिए जितना हम सब ये प्रैक्टिस करें इस देह भान से न्यारे रहने की, इसका त्याग करते चलें, तो दूसरी कई बातों का सहज त्याग हो जाएगा। तीसरा, अगर आप सब ध्यान देंगे तो संबंधों के साथ आत्मा का इतना अटैचमेंट है, जन्म हुआ, जन्म होते ही मात पिता के साथ संबंध हुआ, फिर और संबंध बढ़ते गए और संबंधों का बहुत बड़ा विस्तार हो गया, संगम युग पर बाबा ने ये नहीं कहा कि इनको छोड़ करके तुम जंगल में चले जाओ, यही तुम्हारे लिए दुश्मन है, नहीं। बाबा ने अपने सब बच्चों को श्रीमत दी, बच्चे प्रवृत्ति में रहो, घर गृहस्थ में रहो, संबंधों को निभाओ, लेकिन बीच में एक शब्द कह दिया, तोड़ निभाओ। पहले तोड़ दो बुद्धि से, फिर निभा दो। बहुत सुंदर शब्द बाबा के आते हैं मुरलियों में, आप सब ध्यान देते होंगे कि तोड़ निभाना है, संबंध निभाना है, सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना। कई बार हम सेवा करते, सेवा लेते, एक दूसरे के साथ सहयोगी बनते, सहयोग देते, धीरे धीरे उनकी आकर्षण में आ जाते हैं और वो लगाव झुकाव एक बंधन का रूप बन जाता है। बहुत कम आत्माएं हैं जो संबंधों में आते हुए संबंधों के बंधन से मुक्त रहें, उनका प्रभाव आत्मा के ऊपर न पड़े। सेवा करें, सेवा लें भी, लेकिन बंधन में न बंधे। ये त्याग बहुत बड़ा त्याग है। बाबा ये बेहद का त्याग हम सबको सिखा रहे हैं कि बच्चे घर गृहस्थ में रहो, बच्चों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, लेकिन ये बंधन आपको अपनी ओर ना आकर्षित करें, किसी के भी लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं आना। और दूसरा इसमें आता है कि यदि मेरी किसी से नफरत हो जाए, वैर विरोध हो जाए, घृणा भावना आ जाए, तो उसके साथ भी आत्मा का संबंध बन जाता है। इसलिए संबंधों के बीच में रह करके, संसार में रह करके, प्रवृत्ति में रह करके, न किसी के प्रभाव में आए, न लगाव झुकाव में आए, और न किसी से नफरत और घृणा हो। कहा जाता है, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से वैर। वैर भी हिसाब किताब बनाता है। और संगम युग पर हम सबको किसी से वैर तो लेना ही नहीं है, क्योंकि संगम पर बाबा ने एक बहुत सुंदर मंत्र दिया है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। गीता में भगवान ने कहा है, यदि मैं आत्मा अपने साथ कोई नेगेटिव संकल्प बार बार रचती हूँ, साधारण संकल्प भी, व्यर्थ संकल्प भी मेरे लिए दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचने लगते हैं कई बार वही घटित होने लगता है। वो सबसे बड़ी दुश्मनी अपने साथ कर लेते हैं। और कई चलते चलते ऐसे साधारण संकल्प परिवार के प्रति भी रच लेते। जैसे एक मिसाल मैं आपको सुनाऊं, मैं सुनाता हूं अपनी क्लासेज में। एक बहुत अनन्य माता बाबा के ज्ञान में थी, बहुत अच्छे रायल घराने की थी। अचानक उस माता के पति ने शरीर छोड़ा और उसको एक ही बेटा था। माता का उस बेटे से बहुत अटैचमेंट, बहुत, जैसे होता है कि एक बेटा है, वही प्रॉपर्टी का मालिक है, वही सब कुछ है, उसको पढ़ने के लिए भेजना, उसकी हर प्रकार की संभाल करना। लेकिन मैं एक दिन उसकी जब क्लास में क्लास करा रहा था तो मैंने कहा, सबको अच्छा योग में अनुभव हुआ? तो माता खड़ी हो गई, कहती, भाई जी मेरा बहुत अच्छा योग लगता था, लेकिन पता नहीं जब से मेरे पति देव का देहांत हुआ है तब से मेरा योग नहीं लगता, और मुझे बार बार कोई न कोई ऐसे संकल्प आते हैं कि मैं बाबा की याद में बैठती हूँ, आधा घंटा एक घंटा ऐसा मेरा टाइम वेस्ट होता है। मैं कहती हूँ ये तो बहुत बड़ी सजा है। तो हमने कहा, क्यों योग नहीं लगता है? और इसके बाद तो बाबा के प्रति स्नेह जागना चाहिए, सर्व संबंधों से बाबा तुमको मिल गया, सब संबंधों से पालना दे रहा है, संभाल रहा है, इतना अच्छा परिवार साथ दे रहा है, फिर योग क्यों नहीं लगता? तो उसने क्या कारण बताया होगा, कहती, मैं अपने बच्चे को जब स्कूल भेज देती हूँ तो सारा समय ये संकल्प चलता रहता है, कोई उसका अपहरण न कर ले, कहीं उसका एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं ये न हो जाए। और अगर वो 5 मिनट भी लेट आता है क्लास से, स्कूल से, तो मेरी नींद फिट जाती है, मुझे टेंशन पैदा हो जाता है और इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। मैंने कहा, माता जी ये क्या सोच रही हो, क्या ये शुद्ध संकल्प हैं? विचार करना सभी। इस प्रकार के संकल्प कई लोगों को मोह ममता के कारण आते हैं और ये संकल्प ही कई बार हमारे दुश्मन बन जाते हैं। यही शत्रुता है, ये मित्रता नहीं है। किसी के प्रति इतने नेगेटिव संकल्प चला लेना जो न होने वाला हो उसका आह्वान कर लेना। इसलिए कोई भी ऐसे संकल्प अगर हो तो पुराने वर्ष की विदाई के साथ साथ क्या करेंगे, इन संकल्पों को भी विदाई दे दो, इसका भी त्याग। जो होना है वो तो होना ही है। और ड्रामा में ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दृश्य में कल्याण समाया हुआ है, इसलिए सदा स्मृति में रखना कि जो कुछ होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होने वाला है। इसलिए बहुत निश्चिंत स्थिति बनने, कुछ भी हो ड्रामा की हर सीन बहुत कल्याणकारी सीन है। देखो इतना बड़ा महाविनाश होता है और उस महाविनाश में भी बाबा कहता है कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि अगर ये महाविनाश नहीं होगा तो इतनी सब आत्माओं को दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी और आने वाली सतयुगी दुनिया का आगमन कैसे होगा। इसलिए इसमें भी कल्याण है। जब इतने बड़ी घटना के अंदर बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है तो छोटी छोटी बातों में जिनसे हद के संबंध बने हैं उनके चिंतन में अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी नष्ट करना ये समझदारी नहीं है। इसलिए इसका त्याग, स्थूल चीजों के त्याग के पहले इस नेगेटिव और व्यर्थ संकल्पों का त्याग चाहिए, क्योंकि आत्मा को बहुत शुद्ध और पॉजिटिव संकल्पों में रहना है तब वो तपस्या कर सकेगी। तपस्या की बड़ी गहन परिभाषा बाबा ने आज भी बताई वरदान के अंदर, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे आत्मा परमात्मा के प्यार के सागर में डूब जाए, ज्ञान के सागर में डूब जाए, समा जाए, यही तपस्या है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब कहीं पर भी देह और संबंधों से लगाव न हो, उसका त्याग चाहिए। तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों के त्याग के साथ साथ विकल्प और विकर्मों का त्याग। हम सब इस तपोवन में, मधुबन वरदान भूमि में आए हैं और बाबा से नए वर्ष के लिए प्लानिंग करेंगे, विचार उनके द्वारा शक्ति और वरदान लेंगे। लेकिन ये संकल्प सब कर लो कि 2016 में हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे और विकल्पों को अलाउ नहीं करेंगे। हो सकता है ऐसा? क्योंकि विकल्प ही आत्मा को परेशान करते हैं। विकारी संकल्पों को विकल्प कहा जाता है, जो देह अभिमान जनित हैं, जो देह अभिमान से उत्पन्न होते हैं। हम सब बाबा के दरबार में एक प्रतिज्ञा करें, वायदा करें कि हम इसका त्याग करके न विकल्प बुरे संकल्प चलाएंगे, कुछ भी हो रहा है सब में कुछ न कुछ रहस्य हैं, कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, फिर मैं अपने संकल्पों को उसके बीच पीछे इस शक्ति को नष्ट क्यों करूं। जब इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया है तो हर सीन को देखते हुए साक्षी दृष्टा स्थिति जैसे बाबा की, बाबा ने इतना समय से हम बच्चों के बीच में पाठ बजाया है, 47 वर्ष से हम अव्यक्त बाबा के पाठ को देख रहे हैं, 33 वर्ष साकार में बाबा ने पाठ प्ले किया, 80 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आप सब विचार करना कि इतने समय से बाबा ने कितनी बार बच्चों को प्रेरणाएं शिक्षाएं दी हैं, लेकिन अगर बच्चे नहीं सुधरे हैं तो बाबा उसके कारण खुद दुखी नहीं हुआ, वो जानता है इस आत्मा का ये पार्ट है, इसको मैंने बनाया था और ये बनेगा ही। ये वर्तमान समय कोई परवश स्थिति है, पराधीन है, इसलिए इससे गलतियां हो रही हैं। बाबा हमारी कमियों पर ध्यान नहीं देता, हमारी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देता, हमारे भविष्य को जान करके पहचान करके बहुत ऊंची नजर से बहुत प्यार से, यही बच्चे तो बने थे, कलप कलप देवता बने थे और अभी फिर बनेंगे, इसलिए मध्यकाल को नहीं देखता है, लेकिन हमारे भविष्य को जानते हुए बहुत निश्चिंत रहता है, मुस्करा देता है। हम सभी भी अवगुण बुद्धि का त्याग कर दें, बहुत बड़ा त्याग है कि हम अवगुण देखना दिखाई देते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन हम उसको देखते हुए भी नहीं देखेंगे, न चिंतन करेंगे न वर्णन करेंगे। ये त्याग अगर हो जाए तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पीछे पीछे आने लगेगी। ये हमारी दृष्टि का ऑपरेशन बाबा करना चाहते हैं, अवगुण दृष्टि खत्म हो जाए, गुणों पर ही नजर जाए। और संगम युग पर बाबा कई बार कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, माला का 9 लाख की माला का भी जो लास्ट दाना है वो भी एक बहुत महान और विशेष आत्मा है, क्योंकि उसने बाबा को पहचाना है। इतनी ऊंची नजर बाबा की है कि हर एक आत्मा विशेष है, महान है, गुणवान है। तो अगर ये दृष्टि हमारी पक्की हो जाए तो क्या होगा, सफलता ही सफलता है, क्योंकि जहां विघ्न आते हैं, जहां सफलताएं होती हैं, वहां कारण यही बनता कि हम एक दूसरे की कमियों का वर्णन करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की कमियों को फैलाना कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा। ये भी एक ईर्ष्या का बहुत बड़ा अंश है, इसलिए इसका त्याग, त्याग की बहुत गहरी परिभाषा बाबा ने हम सबको सिखाई है कि अवगुण वृत्ति का त्याग हो जाए, गुण ग्राही वृत्ति बन जाए। और जो हमारे सेवाओं के फील्ड के अंदर हद की कामनाएं हैं, हद की इच्छाएं हैं, नाम की, मान की, महिमा की, हमने किया है कम से कम लोगों को पता तो चले, बड़ों को तो पता चले, कई बार ये हद की कामनाएं, हद की इच्छाएं हमारी खुशी को छीन लेती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इसका भी बाबा ने कहा, बच्चे त्याग करो। कईयों को इस बात का अभिमान रहता है कि मैं प्लानिंग बुद्धि हूं, मैं इन्वेंटर हूं, मैं बहुत अच्छी सेवाधारी हूं, आत्मा मेरे वाणी का प्रभाव पड़ता है, मैं जो कहता हूं वो लोगों को समझ में आता है, ये समझाती है ये समझाता है तो उसको पता नहीं चलता है, इसलिए मैं अच्छा हूं। अच्छाइयों के अभिमान का त्याग हो जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब बच्चों को आगे किया, हम सब ब्रह्मा बाबा के अभी नए वर्ष में जनवरी मास के लिए मधुबन से होमवर्क भेजा है सेंटर्स पर, 31 कदम, पहली तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के पुरुषार्थ के लिए ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया। कई बाबा के बच्चे कहते हैं हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, साकार में भले नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त रूप से बाबा ने साकार के सब लक्षण, सब विशेषताएं, सब कदम वर्णन किए हैं। तो जब मैंने देखा, मुरलियों को स्टडी किया, तो मैंने देखा कि बाबा ने खुद ही सुनाया कि ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया, और ये किया, इसको फॉलो करो। तो बाबा ने हम सब के लिए जो कदम रखे हैं, बच्चों को बाबा कहता, बच्चे तुम्हें कोई नया कदम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कदम उठाए, जिस पर मैं चला, आप बच्चे सिर्फ फुट स्टेप, कदम पर कदम रख करके आगे आ जाओ, संपन्न और संपूर्ण बन जाओगे। तो बाबा ने कौन कौन से ऐसे कदम रखे, तो हम एक दो बता रहे हैं आपको, कैसे बाबा एकदम निरहंकारी हो करके सबको सम्मान दिया, सबको अपने से बड़ा रख करके, आगे रख करके, पहले आप करके अपने आप को छिपाया। कभी वर्णन चिंतन में नहीं आया कि मैं करता हूं। दो शब्द बाबा के थे, एक बाबा कहता था ये बाबा करा रहा है, बाबा करावनहार है, इस देहधारी को नहीं याद करना, और दूसरा कहता था ये बच्चे सब कुछ करते हैं, मैं क्या करता हूं। मैं और मेरेपन का बाबा ने इतना त्याग करके एकदम निरहंकारी, नम्रचित, निर्माण चित, सब बच्चों को रिगार्ड दे करके अपने आप को एकदम निरहंकारी बना लिया। हम बाबा की मुरलियों से अनुभव करते हैं कि कभी भी साकार बाबा की मुरलियों में, ब्रह्मा के शब्दों में, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये उच्चारण नहीं हुआ कि मैंने ये किया है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, नहीं, बच्चे शिव बाबा तुम बच्चों को पढ़ाता है। जबकि साकार बाबा की मुरलियों से स्पष्ट झलकता है ये महावाक्य शिव बाबा के हैं, ये महावाक्य ब्रह्मा बाबा के हैं। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव उसमें सुना रहे हैं, दुनिया में जो चल रहा है, क्योंकि उस समय नया नया ज्ञान था, नई नई सेवाएं थी, एक तरफ लोग अनुभव भी करते थे तो दूसरी तरफ बहुत भ्रांतियां थीं, और भ्रांतियों के कारण बहुत विघ्न पड़ते थे। कहीं पर कोई प्रदर्शनी करने जाते थे तो प्रदर्शनी को कोई ने आग लगा दी, कोई ने कुछ कर दिया, चित्र फाड़ दिए, बहुत सारा विरोध होता था। शुरू की सेवाओं के ऐसे अनुभव रहे हैं, आज तो हम लोगों के लिए बहुत सहज हो गया है। पहले अगर किसी के पास निमंत्रण कार्ड लेके जाते थे तो निमंत्रण देख करके पहले फाड़ देता था, फिर गाली देके भगा देता था, कहां से आ गए तुम यहां। आज तो स्वीकार करते हैं, कहते हैं आप आओ हमारी सभा में, आओ हमारे प्रोग्राम में आओ, निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन सेवाओं में हुआ है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के समय तो बाबा के ऊपर कितने कलंक लगाए, कितनी उल्टी सीधी बातें अखबारों में लिखी, क्या क्या बाबा को कहते थे, लेकिन बाबा इतना नम्रचित, कभी बाबा ने जोश नहीं दिखाया, कभी कहा नहीं कि इनके ऊपर मानहानि का केस कर दो, ये क्या क्या बोलते हैं, नहीं बच्चे ये तो निर्दोष है, इनको पता ही नहीं है। निर्दोष साबित किया सब बच्चों को कि ये शब्द जरूर कहे कि आज जो तुम्हें गालियां देते हैं, बच्चे जितनी गालियां दे रहे हैं आगे चल करके ये सब गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे, और आज जिन्होंने भी शायद विरोध किया हो, गालियां दी हो, उन सब को आप देख लो कि बाबा ने उस समय सहन किया, मान शान जो भी प्राप्तियां थी सबका त्याग किया, और आज देख रहे हैं कि बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी भावना, कितना बहनों के प्रति सबका रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, कितना प्यार से सब जगह देते हैं, बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, दिन बदल गए। लेकिन ये किसके फलस्वरूप सफलता मिली है, ये वो त्याग से मिली है, वो सहन किया है, वो त्याग किया है, उसके कारण आज हम उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। तो त्याग की और गहरी गहरी बातें सोचना, बहुत बड़ा विस्तार है त्याग का। हम सिर्फ स्थूल में देखते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छे ऐसे लगे हैं, यहाँ तो ये चीजें हैं, यहाँ तो कहाँ ये त्यागी हैं, कहते हैं हम त्यागी हैं, लेकिन ये तो बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये सब साधन हैं, सुविधाएं हैं। और बाबा अपने बच्चों को कहता है कि जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए तो मैं बंधा हुआ हूं। आवश्यकताएं तो पूरी होनी ही हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इच्छाएं तो कभी अच्छा बनने नहीं देंगी, और एक पूरी हो जाएगी तो और पांच दस नई नई उठ जाएंगी। इसलिए संगम पर बाबा ने हम सब बच्चों को ये बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया, इच्छा मात्रम अविद्या। क्यों इच्छाएं रखते हो? अपने आप बाबा को जो देना है अपने आप दे देगा। सब बातों से मैं समझता हूं कि ब्राह्मण आत्माएं जितनी संपन्न हैं संगम युग पर, उतना दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि इनके पास गुणों का शक्तियों का ज्ञान का अखुट खजाना है। और जिसके पास अविनाशी खजाना है, उसको स्थूल न भी हो, कमी भी हो, तो भी वो तृप्त है, संतुष्ट है, भरपूर है। कभी भी उसके चेहरे से, उसके बातों से ये नहीं लगेगा ये शायद गरीब है। हैं सब बाबा गरीब निवाज है, लेकिन उन गरीब बच्चों का चेहरा, चलन, पहनना, रहना बहुत सुखदायी दिखाई देता है। इसलिए लोग समझते हैं शायद इस संस्था के अंदर तो पैसे वालों को ही बुलाया जाता है, लेकिन अगर कोई पूछे आकर के तो 80% 90% एकदम गांव के और गरीब लोग हैं जो बाबा के इस ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन वो बाबा के बनने के बाद उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी पहरवाइश जो चेंज हुई, उसके अंदर वो अलौकिकता आई, दिव्यता आई, स्वच्छता आई, और उसके कारण वो रायल लगते हैं, बहुत रायल हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बाबा ने समान जागृत किया कि तुम तो देवता हो। है सबको समान ये कि हम तो वही कलप कलप की देवी देवताओं की आत्माएं संगम पर फिर से बाबा के पास आई हैं, और अगला जन्म फिर से देवी देवता बनना ही है। निश्चय ना, सबको निश्चय है ना? ये किसलिए यहां पढ़ रहे हैं? इस विद्यालय की पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट तो सबके सामने है ना। और जब वो देवता बनना है तो हम कोई साधारण नहीं है, हम बहुत रायल हैं, दिव्य गुणों से संपन्न हैं, भरपूर हैं, किसी के आगे कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मांगना नहीं। बाबा का ये बहुत प्यारा मंत्र रहा है, बच्चे मांगने से मरना भला। क्यों मांगेंगे किसी से? भले बाबा की यज्ञ में बहुत परीक्षाएं आई, बिल्कुल बेगरी पार्ट था। कई लोग कहते थे उस समय कि बाबा कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं हूं। तो बाबा कहता था तुम्हें मैं ये क्यों याद करूं, मैं तो शिव बाबा को याद करता हूं, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इतना बेपरवाह बादशाह बाबा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कितनी भी परीक्षाएं आई यज्ञ के अंदर, बेगरी पार्ट हो गया, चार आना भी खाने के लिए नहीं, और 350 का भोजन बनना है। आप सोच सकते हो अगर कोई साधारण माँ बाप हो तो उनको कितनी चिंता हो जाएगी, अगर दो बच्चे भी हों भूखे हों तो उनको नींद नहीं आएगी। और बाबा के पास 350 बच्चे, और बाबा बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, खिलाने वाला वो है, बच्चे उसके हैं, वो थोड़ी भूखा सुलाएगा। वो कितना सहन किया, कितना त्याग किया बाबा ने कि बच्चे निश्चिंत रहो, बाबा एक दिन भी भूखा नहीं रखेगा। तो ऐसा बाबा ने करके दिखाया और सिखाया। अब अपने बच्चों को कहता है, बच्चे कोई भी परीक्षाएं आ जाए डरना नहीं, घबराना नहीं, त्याग वृत्ति और तपस्या का बल। तपस्या क्या है? तपस्या माना ऐसे नहीं सिर्फ बैठ जाओ पंथी मार करके, चौकड़ी लगा करके, बस मैं तो बाबा के प्यार में खो गया। बाबा तपस्या के बड़े गहरे राज सुनाता है। तपस्या माना, एक बाबा दूसरा न कोई। संकल्प में भी कोई देहधारी की तरफ बुद्धि न जाए। कईयों के आगे कोई परीक्षा जब आती है तो उस परीक्षा के समय फलाना होता तो मदद मिलती, वो बड़े अच्छी पोस्ट पर है, वो सहयोग देता, फट से उसकी तरफ ध्यान जाता है। फिर बाबा मुस्कराता है और देखता है कि अच्छा वो तुमको याद आया, पहले मुझे याद नहीं किया। ध्यान रखना, सर्वसमर्थ हजार भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है और सर्व संबंधों से साथ निभाने के लिए बंधा हुआ है। इसलिए एक वृत्ता, कुछ भी हो जाए पहले नंबर में एक बाबा की याद आए। बाबा को जिसे सहयोगी साथी बनाना होगा अपने आप बनाएगा। मैं उस आत्मा का आह्वान न करूं, मैं अपने पास अपने बाबा का आह्वान करूं। इतना निश्चय बुद्धि होकर के बाबा का आह्वान करो, बाबा को कहो बाबा आपके आगे कहीं ना कहीं से मदद सहयोग भेज देगा। लेकिन देहधारी की तरफ अगर पहली बुद्धि चली गई, माना आपकी तपस्या खंडित हो गई। तपस्या खंडित हो गई तो वरदान कैसे मिलेगा? अगर बाबा के वरदान प्राप्त करने हैं तो अखंड तपस्वी बनना, माना जो संकल्प करो उसके अंदर फूल दृढ़ता हो कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, एक बल और एक भरोसा, एक की लगन में मगन और लौलीन स्थिति, एक में समाया हुआ, उसको कहते हैं तपस्वी। और वो तपस्वी जिसको बाबा कहता है वो है बेहद का वैरागी, बेहद का वैरागी। हद की वैराग की भावना नहीं जागती, ऐसा हो गया कईयों को शमशानी मसानी वैरागी बाबा उसको कहता है। कोई ने शरीर छोड़ा मुरली के अंदर, आप सब शमशानी वैरागी की बात सुनते होंगे। जब कोई शरीर छोड़ता है तो जब उसको ले जाते हैं शमशान में और चिता पर रखते हैं तो जो साथ जाते हैं उनको बहुत वैराग्य आता है। अरे बेचारे ने इतना सब किया, इतने बड़ी बड़ी मकान बनाए, सेंटर्स बनाए, पैसा इकट्ठा किया, ये सब किया और ऐसे चला गया, ऐसे हम भी चले जाएंगे, वैराग्य आ जाता है। और उस समय वैराग्य आता है, थोड़ी देर के बाद वो जला करके पूरा करके बाजार में आता है, देखता है चहल पहल भपका खाना पीना और उसको देख करके वो बात वहीं की वहीं रह गई, वो मसानी वैराग्य। थोड़े समय का आया और फिर आया और फिर वही लग गया अपने धंधे में, कार खाने पीने रहने में। बाबा कहता ये वैराग्य मैं नहीं सिखाता हूं, मैं तो कहता हूं बच्चे सारी दुनिया ही मुर्दा घाट है, सब खत्म होने वाले हैं, इसलिए तुम बच्चे एकदम बाबा के प्यार में खो जाओ, सबको जाना एक दिन। इसलिए बेहद के वैरागी बन करके, वैरागी के दो अर्थ मैं बहुत सरल भाषा में आपको बता दूं, एक किसी से राग नहीं, राग माना लगाव झुकाव नहीं, और दूसरा किसी से वैर नहीं है, न किसी से वैर है न किसी से राग है, वो है वैरागी। तो हर कार्य करते हुए वृत्ति उपराम हो जाए, अनासक्त हो जाए, आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए और अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके एक बाबा के प्यार में खोई रहे, ऐसी आत्मा को बहुत सारी सफलताएं दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी सफलता उसको ये मिलती है कि उसकी नेचर बड़ी सरल हो जाती है, वो अपने को जहां चाहे वहां मोल्ड कर सकता है। जैसे कहते हैं जो रियल गोल्ड होता है ना, उसको सहज मोल्ड कर सकते हैं। जेवर बनाने के लिए रियल गोल्ड की जरूरत होती, भले उसको मिक्स करते हैं, कम कीमत करने के लिए मिक्स कर देते हैं, लेकिन जो रियल होता है वो मोल्ड हो जाता है। अगर सचमुच वो त्यागी और तपस्वी आत्मा है तो हर परिस्थिति में हर बात में अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, मोल्ड कर लेगी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हुआ, इसको ये सेल्वेशन मुझे नहीं मिली, मेरे को कौन पूछता है, मैं इतना करता हूं, मैंने इतनी गीता पाठशाला बनाई, मैंने सेंटर बना के दिया, मैं मधुबन में आया तो मुझे एक चारपाई भी नहीं दी, मेरे को तो टेंट में सुला दिया। क्या क्या करते हो, सुनाई देता है कभी कभी। अब आप समझ सकते हो, अगर 17,000 को हम छुट्टी देते हैं और उसकी जगह पर 23,000 लोग आ जाएं, आपके घर में अगर 5 की जगह पर 10 आ जाएं, आप क्या करोगे? 17-18 हजार को छुट्टी दी गई और आज संख्या हमारे पास कितनी आई है, 24,000 हो गई। अब 23,000-24,000 लोगों को जरूर टेंट ही मिलेगा, भोजन में भी लाइन मिलेगी, सबको तो VIP ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती। तो कई लोग अपने टीचर से बिगड़ जाते हैं, बहन जी मैं तो सेंटर के लिए इतना करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, और यहाँ पर आपकी इतनी भी पहुँच नहीं जो मुझे एक चारपाई दिला दो। अब बहनें बेचारी क्या करेंगे, बहनों का क्या दोष इसमें? अगर संख्या कंट्रोल में होती तो सबको साधन मिल जाते हैं। इसलिए जो मिला जैसे मिला अपनी नेचर को बड़ा इजी बना लो, बहुत सरल बना लो। बाबा के घर में दो पैर पृथ्वी तो मिल गई। आज आप कुंभ मेले में गए हो, मैं एक बार गया था कुंभ मेले में, बेचारे इतनी ठंडी के बीच में रेत के अंदर आग जला करके, कितने अच्छे अच्छे रहल परिवार वाले टेंट में भी ऐसे ही पड़े हुए थे, नीचे घास डाली हुई है, चावल का पुलाव होता है वो बिछा दिया और वहां पड़े हुए हैं, न कहीं लेटरिन की सुविधा है, न नहाने की सुविधा है, वही ठंडा पानी गंगा जी का, उसमें जाके डुबकी लगा रहे हैं और जय गंगे कह के पावन बन। और यहाँ तो बाबा ने अपने बच्चों को कितना प्यार से रखा, कितना प्यार से खिलाता पिलाता सुलाता, और कहता है बच्चे मेरी गोदी में आके सो जाओ। तो इसलिए इसमें भी जो प्राप्ति हुई है, जितनी प्राप्ति हुई है, हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है। बाबा एक मुरली चलाई है कि बच्चे एक दिन ऐसा आएगा जो इन पहाड़ों को ही आपको गद्दा बनाना पड़ेगा, यही तकिया आपका बनेगी, ये बिस्तर नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो मिला है उसमें संतुष्ट रह करके, प्रसन्न रह करके तपस्वी बनो। तपस्या तो जंगल में पानी में एक टांग पर खड़े होकर लोगों ने की, तब वरदान मिला। और हम सबको तो बाबा ऐसे ही दिल खोल करके रोज, कई बार कहता है मैं छप्पर फाड़ के वरदान देता हूँ, तो बाबा इतने वरदान दे रहा है, वरदानों से माला माल किया है। तो त्याग और तपस्वी मूर्त बन करके बहुत सरल नेचर, बहुत सहनशील नेचर, बहुत मिलनसार नेचर, बहुत मोल्ड करने वाली, ऐसी बन करके बाबा को प्रत्यक्ष सबूत चाहिए, तब सफलता हमारा चरण चूमेगी। सफलता तो ब्राह्मणों को होनी ही है, मिलनी ही है। कुछ भी संकल्प करो सिद्ध हो जाए, बोल बोलो सिद्ध हो जाए। तो अगर संकल्प बोल और कर्म की सिद्धि चाहिए तो विधि यथार्थ रखना, ये रिद्धि सिद्धि नहीं है, ये विधि से सिद्धि है। अगर विधियां यथार्थ हैं तो सिद्धि तो होनी ही है। तो हम सब बाबा के सिद्धि स्वरूप सफलता मूर्त वरदानी बच्चे हैं, और नए वर्ष में ऐसा सम्मान लेकर के हम सब अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बना करके बेहद के वैरागी और त्यागी बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसा शुभ संकल्प आज के दिन ले लो तो कल बाबा आपके ऊपर ठप्पा लगा देगा। ओम शांति। बैठो बैठो, दो मिनट योग करके फिर जाओ, सब बैठ जाओ।